इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि वेद और मानवी ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की घोषणा की, जिसे आयान और रमेश मेहरा को परेशानी हुई, जबकि वेद के माता पिता खुश थे। वेदांत और रीना के बीच भी झगड़ा होता है। इस अध्याय में वेद देर से घर लौटा और अवनी और मानवी को सोते हुए पाया। वो उनके साथ रहने की खुशी महसूस करता है और अवनी के प्रति अपने प्यार को स्वीकार करता है। इस बीच वेदांत ने रीना से झगड़ा किया और करीना के साथ एक होटल में गया, जबकि रीना रोती रही और अपने जीवन पर पुनर्विचार किया। आयान जोया के बारे में सोच रहा है। नाउ नेक्स्ट। अगली सुबह सबसे पहले मानवी की आंख खुली। वैसे भी उसे आदत थी जल्दी उठने की, और ऊपर से हालात ने उसे और बेचैन कर रखा था। रात भी उसने बड़ी मुश्किल से काटी थी। जैसे ही उसकी नज़र खुली, सबसे पहले उसकी नज़र अवनी पर गई, जो उसके पास ही सो रही थी। अवनी को देखकर मानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह वेद पर पड़ी, उसका मूड एकदम खराब हो गया। वेद ब्लैंकेट में आराम से सो रहा था और अवनी उससे चिपकी हुई थी। वो तीनों एक ही ब्लैंकेट में थे। आज इसे अपनी बेटी याद आ गई, इससे पहले कहाँ था, मानवी ने मन ही मन सोचा। वो धीरे से उठी, बाथरूम जाकर फ्रेश हुई और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी एक ही रात में बदल गई है। कल तक वो साधारण जिंदगी जी रही थी, वहीं आज आलीशान होटल के इस शानदार स्वीट में बैठी थी। उसकी जिंदगी में जो हो रहा था वो इतना अचानक था कि उसकी समझ से बिल्कुल परे था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसकी जिंदगी के फैसले दूसरे ले रहे थे। अच्छे थे या बुरे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके दिल में सुकून बिल्कुल नहीं था। ना तो उसे वेद पर भरोसा था, ना अपनी किस्मत पर। वेद वही था जो इतने साल पहले उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया था। अब उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल का काम था। तभी अचानक वेद की आवाज ने मानवी का ध्यान तोड़ दिया। गुड मॉर्निंग बेबी। मानवी ने उसकी तरफ देखा। वेद मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था, लेकिन मानवी ने उसकी गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर गई। नाराज हो मुझसे, वेद ने धीरे से कहा। वो अवनी को अपने पास से हटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट ठीक से डाल देता है, फिर बेड से उठकर इंटरकॉम पर चाय मंगवाता है और सोफे पर मानवी के पास आकर बैठ जाता है। मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं, मानवी ने रूखाई से कहा। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर दूर बैठा तो जोर से बोलना पड़ेगा और अवनी उठ जाएगी, उसे सोने दो, वेद ने समझाया। मानवी का चेहरा अब भी सख्त था। हम अवनी के लिए साथ रह सकते हैं, मगर तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तुम्हें शेखर से शादी करनी थी, उसके साथ रहना था। मैंने तुम्हारा सपना तोड़ दिया, यही बात है? वेद ने धीमे स्वर में पूछा। वेद के मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि मानवी शेखर को पसंद करने लगी थी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी, ना शेखर से ना तुमसे। मैं बस अपनी बेटी के साथ अकेले रहना चाहती हूँ, मानवी ने साफ कहा। मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है, वेद गहरी सांस लेकर बोला। ठीक है, मगर अच्छी बात है कि तुम्हारे दिल में शेखर के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो अब तुम मेरी बेटी की माँ हो, मेरी पत्नी हो, हम दोनों साथ रहेंगे, मानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कड़वाहट से कहा। पहले तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। मैं तुम्हारी कंपनी में काम करती रही, फिर भी तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं चला। लेकिन जिस दिन तुम मेरे सामने आए, कभी जाना कि तुम बलवंत मेहरा के बेटे हो, वेद मेहरा, नामी प्लेबॉय। अब तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ, और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझसे कभी प्यार कर सकते हो। उस रात तुम मेरे करीब क्यों आए? शादी जैसी भी हुई थी, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए था। अगर पास आए तो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यही वजह है कि मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकती, वेद की आवाज़ भारी हो गई। मैं अवनी की कसम खाकर कहता हूँ मानवी, मैं बहुत अच्छा पिता और पति बनूंगा। जो बीत गया उसे नहीं बदल सकता, मगर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। मानवी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे मजाक लग रहा हो। सुबह सुबह कॉमेडी का मूड नहीं है मेरा, सिर दर्द हो रहा है। तभी चाय आ गई। मानवी ने कप उठाया और धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगी। मुझे साबित करने का एक मौका तो दोगी ना, वेद ने उम्मीद से कहा। अभी तो तुम्हारे साथ हूँ, देखती हूँ तुम्हारे रंग ढंग, मानवी ने लापरवाही से जवाब दिया। वेद समझ रहा था कि मानवी इस वक्त सिद्ध पर अड़ी हुई थी। उसने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चाय पीता रहा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बाजार चलेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना, मानवी ने साफ लहजे में मना कर दिया। वेद ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार शांत स्वर में बोला, तुम्हारी और अवनी की शॉपिंग करनी है, जाना पड़ेगा। हम दोनों के पास पहले से ही काफी कपड़े हैं, कोई जरूरत नहीं है, मानवी ने फिर मना किया। वेद ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोला, देखो बाकी बातों में तुम्हारी मान लूंगा, मगर इस मामले में बिल्कुल भी नहीं। मेरी राजकुमारी के पास ढेर सारे कपड़े होने चाहिए, और तुम्हें भी अपने लिए नए कपड़े खरीदने होंगे, ज्वेलरी भी। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी पत्नी और मेरी बेटी इन पुराने कपड़ों में नहीं घूम सकती। जब मैं कह रहा हूँ तो समझ लो ये काम पक्का होगा। सुबह सुबह जोया और सारा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जोया पहले ही उठ चुकी थी और बालकनी में बैठकर चाय का मजा ले रही थी। मौसम भी बड़ा सुहावना था। दरवाजे पर हुई खटखटाहट से उसने घड़ी देखी। अब तो उठने का वक्त हो चुका था। उसे लगा शायद सारा होगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने आयान खड़ा था। वो पहले से ही तैयार था, ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में, चेहरे पर ताजगी और हल्की मुस्कान लिए। उसे देख जोया कुछ पल को हैरान रह गई। कोई काम था, जोया ने पूछा। लेकिन आयान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे अंदर आने लगा। जोया एक तरफ हट गई और वो कमरे में दाखिल हो गया। जोया की नजर उसके हाव भाव पर थी। उसे आयान का ये बर्ताव अजीब लग रहा था। तभी बेड पर हलचल हुई। सारा जो अब तक गहरी नींद में थी उनकी आवाज से जाग गई। चाचू आप, सारा ने नींद भरी आंखों से कहा और उठकर बैठ गई। आयान मुस्कुराया। हाँ सारा, लेकिन मुझे जोया से बात करनी है। तुम अभी अभी जागी हो, जरा मेरे कमरे में चली जाओ। उसने अपनी चाबी सारा को पकड़ा दी। सारा ने उनींदी आवाज में कहा, चाचू मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, जल्दी से आकर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इतना कहकर वो मुस्कुराई और चाबी लेकर वहां से निकल गई। कमरे में अब सिर्फ आयान और जोया थे। जोया हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। सुबह सुबह ये क्या हो गया, तुम कमरे में क्यों आए, उसने कहा। हाँ कहो, क्या बात है। मुझे बैठने को नहीं कहोगी, आयान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। जब तुम जबरदस्ती कमरे में आ सकते हो तो बैठ भी सकते हो, जोया ने अपनी जगह पर खड़ी रहकर जवाब दिया। आयान धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। उसने जोया के पास जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन जोया ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की। तुम आगे क्यों आ रहे हो, यहां खड़े रहकर बात कर सकते हो, जोया ने धीरे से कहा। लेकिन आयान ने कदम और बढ़ाया। जोया डरकर पीछे हटती रही और दीवार से लग गई। अब उसके पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। क्या मानवी के लिए वेद पर यकीन करना इतना आसान होगा, और आयान जोया के पास कमरे में क्यों आया था, उसका मकसद क्या था। हर कहानी की तरह यहां भी जवाब आपके सामने तभी आएंगे जब आप हमारे अगले एपिसोड या अध्याय पढ़ेंगे। लेकिन एक बात तय है, ये रिश्ते, ये भावनाएं और ये टकराव हर पल आपको बांध कर रखेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, साथ ही इसे रेटिंग देना ना भूलें। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमें लिखने का हौसला देते हैं और हमारी अगली कहानियों को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें, क्योंकि आपके विचार हमारी दुनिया को और रंगीन बनाते हैं।